ओम शांति। 17 मार्च 2007। बाप दादा की समय प्रमाण अभी हर बच्चे के प्रति चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बात समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करो कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ सदा, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थ पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। पुरुषार्थी होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा, मनसा सेवा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजानों का परिचय कराना और चलन द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा है कि सबसे सहज सेवा का साधन है कौन सा? मनसा सेवा। सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस का रॉकेट फास्ट जाता है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है, ब्रह्मावाद की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल, अब तक जो भी वायुमंडल का अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो बड़े बड़े वाणी द्वारा प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब स्वयं को रूह समझेंगे, जब निगेटिव नहीं होगा, जब व्यर्थ समाप्त होगा। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब पवित्रता होगी, जब क्या होगा? कल भी पढ़ रहे थे, किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है, तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना? है ना अनुभव? तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन रूहानी वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब आपके दिल में, मन में किसी के प्रति भी घृणा, नफरत, उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। मुरली है 17 मार्च 2007 की। दो तीन बातें इसमें बाबा ने कही है। पहले तो बाप दादा की समय प्रमाण अभी हर बच्चे के प्रति चाहे नंबरवार है, बाबा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ सदा, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थ पेपर में, पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना ही है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। तो क्या कह रहे बाबा? पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी में पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। तीव्र पुरुषार्थ में पेपर, साधारण पुरुषार्थ में पेपर नहीं, तीव्र पुरुषार्थ में पेपर। वो कौन से है? सबसे पहला पेपर है शरीर। कितना भी उमंग उत्साह है तीव्र पुरुषार्थ करने का, शरीर ही साथ ना दे तो क्या करेंगे? बीमारी पड़ जाए तो क्या करें? सबसे बड़ा पेपर तो वही शरीर का पेपर। तीव्र पुरुषार्थ में शरीर स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर शरीर की तरफ ध्यान ना दिया जाए, उसको स्वस्थ न रखा जाए, तो पुरुषार्थ चाहे सब कुछ है, स्थान है, वायुमंडल है, समय है, परंतु पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि शरीर जब बीमार होता है तो आत्मा को भी नीचे खींचता है। शरीर अपने साथ आत्मा को भी नीचे खींचता है। क्या बुखार की अवस्था में अशरीरी बना जा सकता है? 103 बुखार और मैं अशरीरी आत्मा हूं, ऐसा हो सकता है? मुश्किल है। और बन के दिखाओ अशरीरी। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। इसके लिए चाहे शरीर में कोई बीमारी है, दर्द है, कमजोरी है, पीड़ा है, तो पुरुषार्थ में तो एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चल जाए तो भी बाधा हो जाती है। लंबे समय तक कोई बीमारी अगर चले, थोड़े समय ठीक है, पुरुषार्थ तो चालू रहेगा, पर वो बीमारी छोड़े ही ना तो वो एक बाधा बन जाती है। इसके लिए दो चार लोगों का भी ठंडा हो जाएगा। जैसे तीव्र पुरुषार्थ की लहर है, वैसे ठंडे पुरुषार्थ की भी लहर है। ठंडे पुरुषार्थ भी तो फैलता है। जो देख रहा है, कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता था, एकदम डाउन हो गया है, तो उसको देखकर हमको भी लगता है ठीक है, इनकी भी ऐसी हालत हो सकती है, तो हमारी हुई तो क्या हुआ? अगर किसी को पूछो शाम में मुरली में क्या है, तो वो कहेगा आज मुरली पढ़ी नहीं। तो हम भी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, हमने भी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? तो सबसे पहला पेपर जो है तीव्र पुरुषार्थ में, वो है शरीर। दूसरा पेपर कहो, बाधा कहो, विघ्न कहो, समय। तीव्र पुरुषार्थ हरेक करना चाहता है, पर क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। कैसे निकाले टाइम पुरुषार्थ करने के लिए? क्योंकि अच्छे पुरुषार्थ के लिए अच्छा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है और कम टाइम में करना है। अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ में चिंतन, मनन, अध्ययन, ये सब बातें भी आती है। बहुत अच्छा बीच बीच में अशरीरीपन का केवल सेवा में ही लगे तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। चाहे कितनी भी अच्छी सेवाएं हो, दिन भर सेवाएं हो, अनेक आत्माओं को सुख देने वाली सेवा हो, परंतु अच्छे पुरुषार्थ के लिए टाइम चाहिए। बाहर रहने वाले 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं तो 6-8 बजे आते हैं वापस, और उनको पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना है, कैसे करेंगे? पुरुषार्थ के लिए तो बहुत सारी इच्छाओं को छोड़ना होता है। एंड रिलीजियस माइंड जो होता है, इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। संसार की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं यदि है, धन कमाने की, ये करने की, वो करने की, नहीं हो सकता है। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, थोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। जो फुल टाइम जॉब है उसको पार्ट टाइम करना पड़ेगा तो ही हो सकता है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए, साधारण पुरुषार्थ की बातें नहीं कर रहे हम, तीव्र पुरुषार्थ के लिए टाइम चाहिए, अच्छा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 12 बजे सो रहे, 11 बजे सो रहे तो कैसे अमृत वेला शक्तिशाली होगा? और अमृत वेले के बाद भी तुरंत कान में लग रहे हैं, या इतने थक जाते हैं कि सो ही जाते हैं, और उठ के फिर भाग भाग के ड्यूटी पर पहुंचते हैं, ड्यूटी पर पहुंचो, दिन भर लगे रहो ड्यूटी में 8 बजे तक रात को, और फिर ट्रैवलिंग 3-4 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है कितनों का तो बाहर दुनिया में, 1-2 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है, तो कैसे होगा उसी वातावरण में, उसी ट्रैफिक में, उसी ऑफिस के वायुमंडल में, और फिर तीव्र पुरुषार्थ भी करना है, नहीं हो सकता है। कोशिश करते हैं लोग, कईयों को सफलता भी मिलती है, परंतु जो एक संतुष्टता है पुरुषार्थ की, वो नहीं हो सकती। तो दूसरा एक है टाइम, तीसरा है सेवा साथी, करने नहीं देते, चाहते हैं हम बहुत करना, पर जूनियर नीचे, ऊपर सीनियर और बीच में साथी, ये तीनों ही जैसे कभी कभी पुरुषार्थ के ही मार्ग में, ऐसा लगता है कि ये बाधा है। करना तो है, सबके बीच में रहकर ही करना है, परंतु ढूंढना है स्वयं को ही मार्ग, कैसे टाइम निकाले, कैसे इन्हीं साथियों के बीच में सेवा करे, कैसे इसी शरीर में जो भी उसकी बीमारी है, जो भी कमजोरी है या जो भी है, उसके ही बीच में रहते हुए तीव्र पुरुषार्थ करे। ये मार्ग हरेक को अपना निकालना होगा, ये मार्ग किसी क्लास में नहीं मिल सकता है, अपना ही मार्ग खुद निकालना पड़ेगा। कैसे इन्हीं परिस्थिति, क्योंकि हरेक की परिस्थिति अलग अलग है, यहाँ रहने वाले भले सब साथ है, फिर भी हरेक का डिपार्टमेंट, हरेक के सेवा साथी, हरेक का टाइमिंग अलग अलग है। उस टाइम में, उन सेवा साथियों में, उस शरीर की हालत में तीव्र पुरुषार्थ करना। चौथा है डायरेक्शनलेसनेस, दिशाहीनता। करना पता क्या है उसमें, अब तीव्र पुरुषार्थ करने का बहुत उमंग है, पर क्या करे, मुरलियां पढ़ ली, साकार मुरली पढ़ी, अव्यक्त वाणी पढ़ी, क्लासेस सुने भटिया की, पर अब करना क्या है। एक सूक्ष्म दिशाहीनता है, कैसे करे, ये एक प्रश्न हमेशा रहता है, बहुत ही सूक्ष्म दिशाहीनता। पता है सभी को क्या करना है, अमृत वेला शक्तिशाली करना है, मुरली का चिंतन करना है, नुमा शाम का योग करना है, बीच बीच में अशरीरी बनना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, सारी बातें तो पता है, परंतु फिर भी दिशाहीनता, डायरेक्शनलेसनेस, क्योंकि जो बातें कही गई है, जो दिशाएं बताई गई है, वो जनरल है, पर्टिकुलर मेरे लिए क्या है वो स्वयं को ही ढूंढना पड़ेगा। बताया तो गया ऐसे ऐसे करना है, सबको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस ज्ञान का आज की तारीख में कि जो किसी को पता नहीं है, सबने अव्यक्त वाणियां पढ़ी है, सबने क्लासेस सुने हैं, आजकल तो इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि बात मत पूछो ज्ञान का। अभी मुरली पूरी नहीं हुई तो तुरंत उसके प्रश्न तैयार है, प्रश्न नहीं है तो उसके उत्तर भी तैयार, उसके पॉइंट्स भी तैयार, 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट, सबको सब पता है, फिर भी सूक्ष्म दिशाहीनता है, एक दिशाहीनता, क्योंकि हरेक को अपनी दिशा खुद निर्धारण करना है, उसका खुद ही ढूंढना है कि मुझे क्या करना है। जनरल में तो ये सब कहा गया है, पर मुझे क्या करना है, मेरी जो परिस्थिति है, मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं जहां बैठता हूं वहां क्या करना है। पांचवा है एक उदासी, डिप्रेशन, सूक्ष्म डिप्रेशन पुरुषार्थ का। करना बहुत है, सब कुछ है, पर हो नहीं रहा है, इस बात की उदासी। एक अवसाद का भाव, वो डिप्रेशन है ही, बाहर नहीं प्रकट होता है, जैसे बाहर के लोगों को डिप्रेशन होता है वैसा डिप्रेशन नहीं, ये थोड़ा अलग डिप्रेशन है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, क्योंकि दिखते हैं, कोई दिखता नहीं है ऐसा खास जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि जिसको भी हम सोचते हैं अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है उसकी कोई ना कोई कमी दिखी जाती है बीच बीच में, तो मन उसे स्वीकार नहीं करता है। जैसे एक राजा था जो इतनी उदासी में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि कितने लोग आ गए उसके डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, पर उसका डिप्रेशन ठीक ही नहीं हो रहा था। कई सारे राजवैद्य आए, कितने लोग आए, पर उसकी बीमारी, उसका डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। उसे कोई रस ही नहीं राज्य में, कारोबार में, घर परिवार में, कहीं पर भी रस नहीं, बस एकांत में और चुपचाप। तो बहुत एक बूढ़ा वैद्य कहीं से आया और उसने उसे कहा गया कि राजा की ये जो उदासी है उसे ठीक करो। तो वो कहता है कि राजा की उदासी किसी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है, उसकी उदासी यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति का कमीज पहनाया जाए जो बहुत सुखी है तो ही उसकी उदासी ठीक हो सकती है। तो राजा के सैनिक, सिपाही, मंत्री सारे ढूंढने लग जाते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जो बहुत 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 सुखी है और जो कह सके कि मैं बहुत संसार में हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हूं। तो दिन रात ढूंढने लगते, जिसको भी मिलते हैं, साहूकार दिखता है दूर से बहुत सुखी है, सब कुछ है, परंतु वो भी दुखी है, कहते हैं हमारे पास बेटा ही नहीं है। कितने लोगों के पास, गरीबों के पास जाते हैं तो गरीब भी दुखी है, गरीब कहते हैं हमारे पास धन नहीं है। सन्यासियों के पास जाते हैं, सन्यासी कहते हैं हम कहां से सुखी, संसार वाले ही हमसे ज्यादा सुखी है, फंस गए बेवजह इस ब्रह्मचर्य के चक्कर में, उससे तो वो ज्यादा सुखी लगते हैं हमको, कहीं नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलता है। तो राजा का एक सिपाही कहीं से जा रहा होता है तो उसे एक चरवाहा दिखता है, वो एकदम मस्ती में गीत गाते हुए डोलते हुए जा रहा है। तो उसको कहते हैं, ए सुनो, तो उसे तो ध्यान भी नहीं कौन कह रहा है, क्या कहते हैं कि क्या तुम सुखी हो? तू कहता है मैं तो बहुत सुखी हूँ, इस संसार में मेरे जैसा सुखी व्यक्ति कोई नहीं हो। तुम करते क्या हो और रहते कहाँ हो? रहने के लिए तो कुछ है नहीं खास, आकाश के नीचे जमीन है वहीं सोता हूँ, थोड़ी छोटी सी झोपड़ी है, दिन भर गायों को चराता हूँ और जो कुछ मिल जाता है खाता हूँ बस, पर मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। वो सिपाही कहते यही है, पकड़ो इसे, पकड़ो। और उसको कहते हैं तुम्हारा कमीज चाहिए, वो कहता है कमीज, कमीज मैंने आज तक पहना ही नहीं। संसार का जो सबसे सुखी व्यक्ति है, राजा को कहा गया था उसका कमीज यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम इस अवसाद से, इस बीमारी से, इस उदासी से मुक्त हो जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति सबसे सुखी है उसके पास कमीज ही नहीं है। वो तो चलो दूसरी बात है, परंतु सुख का संबंध, खुशी का संबंध बाहर की वस्तुओं से नहीं है, बाहर की किसी वस्तु से नहीं है। किताबें मिल सकती है परंतु क्या विवेक मिल सकता है? अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत किताबें हो सकती है, खरीद सकते हैं, कितनी महंगी महंगी किताबें आजकल, अच्छी अच्छी किताबें बहुत महंगी होती है, वो खरीद सकते हैं, परंतु क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वहां से? अभी इंटरनेट पे कितनी सारी किताबें फ्री अवेलेबल है, फ्री PDF, फ्री HTML, सब कुछ मिल जाता है। हमें याद है जब हम किताबें पढ़ते थे पहले, तब हमारे पास ये तो था ही नहीं, नेट वगैरह कुछ भी नहीं, ना तो पैसे थे, वो दुकान पे जाके बीच बीच में किताब ली थोड़ी सी, क्या है देखने के लिए, थोड़ा पढ़ा और वापस दे दिया, बाद में खरीदेंगे। किताबें तो थी नहीं, ना तो पैसे थे उस समय। तो वो एक इच्छा ज्ञान को प्राप्त करने की, वो एक अभिप्सा सत्य को जानने की, वो ज्यादा आवश्यकता है, उसकी ज्यादा आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थ के इस मार्ग पे एक सूक्ष्म उदासी, और यदि हम देखें तो ये उदासी का जन्म हो रहा है कंपैरिजन से। हम कंपेयर कर रहे दूसरों के साथ हर चीज में, वो जो आदत पड़ी हुई है कंपैरिजन की। हम ये भूल रहे हैं हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, हर एक का भाग्य अपना अपना है, हर एक अपने साथ ही पूर्व जन्म से बहुत कुछ ले आया है या कुछ नहीं लाया है। इसके लिए उदासी का कोई कारण नहीं है। मैं यूनिक हूँ, बाबा हमेशा कहते हर आत्मा कैसी है, विशेष है, जो विशेषता मुझ में है और किसी में नहीं। अपनी अपने प्रति इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी बुद्धि के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपनी स्मृति के प्रति, याददाश्त के प्रति, वाणी के प्रति, भाषा के प्रति, कल्चर और बैकग्राउंड के प्रति, कुछ भी हो सकता है। ये हम क्यों बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है, यूनिक है, और मैं भी वैसा ही हूं। तो पांचवा था डिप्रेशन। अगला है लेजीनेस, एक आलस्य। पुरुषार्थ तो करना है बहुत, परंतु कल भी नहीं, करना है आज ही करना है, परंतु कर लेंगे, परंतु पता नहीं, एक अजीब सी आलस है अंदर ही अंदर, समझ में नहीं आता है, मूड नहीं है या शरीर का आलस है, क्या है पता नहीं। लगता है बहुत करे बहुत करे, एक आठ घंटा योग का चार्ट लेके ही जाएंगे आज, परंतु पता नहीं, अज्ञात है। ऐसा नहीं कि कुछ ज्ञान नहीं है, सब पता है, पूरा आलस अलबेलेपन की सीरीज खत्म की है इधर। कितने थे वो 64 नहीं 84 आलस के नहीं थे शायद, तो वो पूरी हो गई किताब, पूरी हुई ऐसे कुछ थे 70 सीरीज पूरी हो गई, पर पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो आलस कौन उठाएगा हमको इस आलस से, कौन बाहर निकालेगा? कोई क्या क्लास इसको निकाल सकता है? शायद अपने ही अंदर बीज है उसका, उसका लिंक, उसकी जो लिंक है बहुत सारी पास्ट की संस्कारों के साथ है, इसके लिए वो आलस करने नहीं देता है। और हम उसे आलस भी नहीं कहना चाहते, आलस और हम बिल्कुल नहीं। सातवां है लिमिटेशंस। मोहिनी बहन का उस दिन एक क्लास हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं ये नहीं कहना चाहती कमजोरी, हर एक की अपनी अपनी कमजोरी नहीं, कमजोरी थोड़ा अच्छा निगेटिव शब्द है, उससे ज्यादा अच्छा शब्द है लिमिटेशन। हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशन है, करना बहुत चाहते हैं पर बुद्धि की लिमिटेशन है, करना बहुत चाहते हैं शरीर की लिमिटेशन है, करना बहुत चाहते हैं पढ़ने की लिमिटेशन है, याद रखने की लिमिटेशन है, करना बहुत चाहते हैं परंतु उस करने की भी लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन है, हर चीज की लिमिटेशन है। हर एक की वीकनेस एक शब्द है, एक है लिमिटेशन। हम कहते हैं हर एक की कमजोरी है उसकी, ये बहुत पुरानी कमजोरी है, पूरा कमजोरी कहना निगेटिव शब्द है, अच्छा शब्द है लिमिटेशन है। हर एक ब्राह्मण आत्मा की अपनी अपनी लिमिटेशन है, वो उतना ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते जबरदस्ती उसके ऊपर, जबरदस्ती करने जाओ तो टूट जाएगी वो, इसके लिए लिमिटेड है। अपनी लिमिटेशंस को जानना, परंतु उस पर काम भी करना और उसको अधिक, जैसे कोई सोचता है मैं इतना ही कर सकता हूं परंतु शायद उसे अवसर ही नहीं दिया गया ज्यादा करने का, इसके लिए वो उतना ही है। हमारे अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई है जिनका हमें भी ज्ञान नहीं है, उन शक्तियों का इतनी क्षमताएं हैं हमारे अंदर जो हमने कभी सोची नहीं थी कि हम ये करेंगे यदि अवसर दिया जाए, समय ऐसा हो तो वो बीज अंकुरित होगा। वो बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ है महानता का, पर शायद हमें ही हम ही अनभिज्ञ है उससे। तो क्या कहा बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थ में पेपर तो आएंगे, पहला कहा शरीर, दूसरा कहा समय, तीसरा कहा साथी कहो या आत्माएं कहो दूसरी, चौथा एक डायरेक्शन लेसनेस, उस डायरेक्शन लेसनेस को डायरेक्शन में परिवर्तन करना है, डायरेक्शन ओरिएंटेड जीवन हो, एक दिशा हो, और हर एक का अपना अपना डायरेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबका एक ही डायरेक्शन है, बाप समान बनना, ये तो बहुत ऊंची बात है, अभी ये कमी है, यहां भटकाव है, इससे बाहर निकलना है। वो भटकाव साइंस के साधनों का भी हो सकता है, तो मेरा पुरुषार्थ बाकी सब नहीं होगा, इससे बाहर निकलना होगा केवल, वो कोई भी हो सकता है, फिर सोशल मीडिया से लेकर कुछ भी, उसमें ही बहुत अधिक चले गए, उससे बाहर आना। अगला है डिप्रेशन, अपने डिप्रेशन को खुद ही डायग्नोस करना, कारण को ढूंढना, क्यों है, क्या कंपैरिजन से उत्पन्न हो रहा है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम, हर एक आत्मा जो है अगर हम देखें तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है, इतने सारे उसके बचपन से अब तक के अनुभव, ज्ञानी जीवन के भी अनुभव, कि जो वो सामने से दिख रही है वास्तव में उतनी वो है नहीं, जितना हमें लग रहा है ये बहुत अच्छी है और हम इससे बहुत नीचे है, जटिलता है हर एक में, इसके लिए कंपैरिजन का कोई कारण नहीं है, तो वो एक डिप्रेशन। फिर है लेजीनेस और लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशंस को जानना, परंतु केवल जानकर रुक नहीं जाना, उस पर काम करना और उसको और आगे बढ़ाना। और दूसरी बात, ये तो पहली बात थी यहाँ की, दूसरी बात यहाँ बाबा ने कही है, तीनों प्रकार की सेवा एक साथ करनी है, मनसा वाचा कर्मना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजानों का परिचय, मनसा द्वारा अनुभव कराना, और चलन द्वारा क्या करना, संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, कोई देखे तो लगे ये योगी है, तपस्वी है। तीसरी बात यहाँ कही है, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। वृत्ति सबसे तेज साधन है, और वृत्ति का निर्माण उस दिन चर्चा की थी काफी विस्तार से, वृत्ति का निर्माण संकल्प से होता है, वृत्ति अर्थात रिपल्स, वो जो लहरें हैं, तरंगे हैं मन में जो फ्लक्चुएशन से मॉडिफिकेशंस के, योग का तो लक्ष्य ही है चित्त वृत्ति निरोधा इति योग, योग अर्थात चित्त की ये जो मॉडिफिकेशन से जो तरंगे उत्पन्न हो ही रहे उसको कम कर देना, रोक देना, इसका निरोध कर देना, और वो योग में ही होगा जब संकल्प बहुत कम होंगे, तो उस वृत्ति से, वृत्ति संकल्प से उत्पन्न हो रही है, और या गुणों का जो आधार है सतो रजो तमो, कहां पर हमारे अंदर ज्यादा है, कौन से गुण ज्यादा है, उसी आधार से वृत्ति का निर्माण। तो बाबा कह रहे हैं वृत्ति से क्या होता है, वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से वायुमंडल, और लास्ट में जो एक बात यहां कही है कि लेकिन हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है, लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब आपके दिल में मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन ना होगा। वृत्ति हमारे अंदर, हमने जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे, आत्माओं के प्रति उल्टे वाइब्रेशन भरे पड़े हैं, बहुत सारी आत्माओं की, किसी की एक कमी देख ली हमने, कुछ कहा नहीं, उसने भी कुछ कहा नहीं, हमने देखा और वो सीधा सबकॉन्शियस में छाप पड़ गई है उसकी, और फिर उस छाप की, वो जो इनविजिबल है, अदृश्य है, वो शब्दों द्वारा प्रकट होता है, जब भी समय मिला, अवसर मिला, तब वो शब्द कैसे आ गए हमें ही आश्चर्य लगता है, परंतु उस निराकार का संबंध, उस साकार शब्द का संबंध उस निराकार भावना से, वो निराकार इनविजिबल भावना ही शब्द का रूप धारण करती है। इसके लिए क्या इंप्रेशन पड़ रहे हैं आत्माओं के, उसके ऊपर ध्यान देना है। पुरुषार्थ में जो बाधा है, अपनी बाधा क्या है उसी पर चिंतन करना है। कुछ 6-7 बातें यहाँ बताई, पर हमारी कुछ और हो सकती है जो यहाँ बताई नहीं गई, उस पर थोड़ा गहराई से मनन करना है। एक दूसरा, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, किन किन आत्माओं के प्रति हमारी वृत्ति में उल्टे वाइब्रेशंस भरे हैं, शायद अभी हमारा उनसे कोई काम नहीं, परंतु वो प्रकट हो सकते हैं कभी भी, अवसर की तलाश है, अवसरवादी है वो, मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्टिक। और जिन जिन आत्माओं के प्रति जो भी उल्टे वाइब्रेशंस भरे हैं, जरूरी नहीं है उनके पास जाए, अपने ही मन में उसके ऊपर काम करना है, अपने ही मन में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है बस। एक बार ऐसा होता है, एक भिखारी भीख मांगते रहता है, बहुत भीड़ वाली सड़क पर, कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं, वो अंधा होता है, उसे दिखाई नहीं देता है, और वो भीख मांग रहा है। कितने लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, किसी का ध्यान ही नहीं उसकी तरफ। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंट जो होता है ना, जो एडवर्टाइजिंग एजेंट्स होते हैं, वो देखता है, उसे बड़ी दया आती है उसके ऊपर, वो कहता है बेचारे गरीब को, अंधा है, कोई भी उसको भीख नहीं दे रहा है, तो वो एक सामने तख्ती लगा देता है, उसके भीख जो होता है अंधा, उसका जो कटोरा होता है उसके सामने कुछ लिखता है और रख देता है, और थोड़ी देर के बाद शाम तक इतना भर जाता है वो, तो वो अंधा उसको पूछता है आपने ऐसा क्या, वो कहता है, उसको पता चल जाता है उसने वहां रखा है कुछ, वो उस व्यक्ति को पूछना है तुमने क्या रखा, तो क्या रखा होगा वो उस तख्ती पर लिखता है, बाहर मौसम कितना अच्छा है, आप सब देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता। वो अंधा व्यक्ति कह रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो पर मैं नहीं देख सकता। तो करुणा का भाव जागृत होता है, थोड़ी सी दिशा बदलती बस, है वही अंधा, वही है भिखारी, वही है, परंतु उस एडवर्टाइजमेंट एजेंट ने, उसका तो काम ही वो है ना वो थोड़ी सी दिशा बदल देता है। थोड़ी सी दिशा बदलने की आवश्यकता है मन की, थोड़ी सी दिशा, थोड़ी सी दिशा अगर बदल दो तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। हमारा किसी के प्रति एकदम गहरा निगेटिव भाव है, उसकी एक एक केवल अच्छी बात होगी, अच्छी बात तो है ही, उसकी एक अच्छी बात का भी केवल 10 मिनट अगर चिंतन कर दिया जाए तो वो जो है निगेटिव ओवर शैडो हो जाएगा, वो छिप जाएगा, दब जाएगा या खत्म भी हो जाएगा।